नमस्ते बच्चों, मैं मंजू देवी परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय इंदौर से। आज हम अध्ययन करेंगे वसंत भाग तीन के पाठ 11 का, जिसका नाम है जब सिनेमा ने बोलना सीखा और उसके लेखक हैं प्रदीप तिवारी। प्रदीप तिवारी जी ने इस अध्याय में सिनेमा जगत में आए परिवर्तन को उजागर करने की कोशिश की है। आरंभ में मूक फिल्में यानी आवाज रहित फिल्में बनती थी, उनमें किसी तरह की आवाज का प्रयोग नहीं होता था। इसके कुछ समय के बाद सिनेमा जगत में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया और सवाद फिल्मों का आरंभ हुआ। इस अध्याय को निबंध के रूप में लिखा गया है, जैसा कि इस अध्याय के नाम जब सिनेमा ने बोलना सीखा के अर्थ से ही स्पष्ट होता है कि इस अध्याय में उस समय का वर्णन है जब सिनेमा में आवाज को शामिल किया गया। प्रदीप तिवारी की निबंध जब सिनेमा ने बोलना सीखा में भारतीय सिनेमा के इतिहास के एक महत्वपूर्ण पड़ाव को उजागर किया गया है। यह निबंध बिना आवाज के सिनेमा के आवाज के साथ सिनेमा में विकसित होने की कहानी बयान करता है। ऐसी फिल्में जिनमें आवाज भी थी वे शिक्षा की दृष्टि से भी अर्थवान साबित हुई, क्योंकि अब लोग सुन सकते थे और फिल्म के मुख्य भाग में दी गई सीख को समझकर अपने जीवन में उतार सकते थे। इस पाठ को हमने दो भागों में विभाजित किया है, तो अध्ययन करेंगे प्रथम भाग का। देखिए, पहला अनुच्छेद, वे सभी सजीव हैं से लेकर नया दौर शुरू हो गया था तक। देश की पहली बोलने वाली फिल्म का वर्णन करते हुए लेखक कहते हैं कि जब देश की पहली बोलने वाली फिल्म आलम आरा प्रदर्शित होने वाली थी, तो शहर भर में उसके पोस्टरों में कुछ इस तरह की पंक्तियां लिखी गईं। वे सभी जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 मुर्दा मानव जिंदा हो गए हैं, उनको बोलते और बातें करते देखो। अर्थात फिल्म में जितने भी पात्र हैं वह सब जीवित नजर आ रहे हैं, सभी उनको बोलते बातें करते देख सकते हैं। इस तरह का विज्ञापन तैयार करके लोगों को फिल्म को देखने के लिए आकर्षित किया गया था और यह आलम आरा फिल्म का सबसे पहला पोस्टर था। 14 मार्च 1931, यह भारतीय सिनेमा के लिए एक ऐतिहासिक तारीख बन गई। इस तारीख में भारतीय सिनेमा जगत में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। इसी दिन पहली बार भारत की सिनेमा में बोलने वाली फिल्म का प्रदर्शन हुआ था, परंतु यह समय वह समय था जब लोगों के द्वारा मूक सिनेमा को बहुत अधिक पसंद किया जाता था। जिस साल पहली बोलती फिल्म को पर्दे पर उतारा गया था, उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी हुई थी। ऐसा नहीं था कि एकदम से मूक फिल्में बनना बंद हो चुकी थी, लेकिन सवाद फिल्म आ जाने पर भी अनेक ऐसी फिल्में बनी हुई थी। अब अलग अलग भाषाओं में बोलती फिल्मों का नया समय शुरू हो गया था। अब नई तकनीकी आ गई थी जिसके कारण फिल्म निर्माता आवाज़ को फिल्मों में शामिल कर सकते थे। दूसरा अनुच्छेद देखिए, पहली बोलती फिल्म से लेकर जरूरी हिस्सा बनी। भारतीय सिनेमा की पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार अर्देशिर एम ईरानी थी। अर्देशिर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म सो बोट देखी थी, जिससे उन्हें इस तरह की फिल्म बनाने की प्रेरणा मिली और उनके मन में भी भारतीय सिनेमा में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जागी। अर्देशिर ने जब देखा कि पारसी के रंगमंच नाटकों को लोगों द्वारा बहुत अधिक पसंद किया जाता है, तो उन्हें ख्याल आया कि किसी पारसी रंगमंच नाटक की कहानी पर आधारित फिल्म बनाई जाए। अर्देशिर जी ने फैसला किया कि इस नाटक के जो गाने थे वे लोगों को बहुत अच्छे लगते थे, इसलिए उन्होंने वे गाने भी ज्यों की त्यों फिल्म में शामिल कर दिए। एक साक्षात्कार में अर्देशिर ने कहा कि उस समय डायलॉग राइटर नहीं होते थे, ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं थी, गीतकार नहीं थे, कोई खास तौर पर लिखने वाला भी नहीं था, संगीतकार भी नहीं थे। जब अर्देशिर जी फिल्म बनाने लगे तो उन्हें यह कमियां महसूस हुई, जिनके बाद जरूरत महसूस की गई कि फिल्म को अच्छी तरह से बनाने के लिए एक खास तौर से संवाद लेखक होना चाहिए, गीतकार भी होना चाहिए जो अच्छे गीत लिख सके, जो लोगों में मशहूर हो सके। संगीतकार उस समय को अच्छा, उस गीत को अच्छा संगीत दे सके। आलम आरा फिल्म के गानों के संगीत के लिए अर्देशिर जी ने स्वयं के संगीत को चुना। फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य यंत्र प्रयोग किए गए थे, तबला, हारमोनियम और वायलिन। आलम आरा फिल्म में अर्देशिर जी ने खास तौर पर किसी को संगीतकार या गीतकार की उपाधि नहीं दी थी, क्योंकि सभी ने अपने अपने हिस्से का योगदान दिया था। जिसे संगीत की थोड़ी जानकारी थी उसने अपना योगदान दिया, जिसे गीत की उसने, इसीलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि किसी खास व्यक्ति ने संगीत दिया या गीत लिखे, सभी का मिला जुला सहयोग था। आलम आरा फिल्म में पहले गायक जिन्होंने पर्दे के पीछे से अपनी आवाज़ में गीत गाए हुए थे डब्लू खान। पहला गाना था दीदी खुदा के नाम पर, प्यारे अगर देने की ताकत है। आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता था, क्योंकि उस समय ऐसे संसाधन नहीं थे जैसे आजकल मौजूद हैं। जब फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो आवाज़ के कारण ही इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ती थी। ऐसा इसलिए करना पड़ा था क्योंकि दिन में बहुत शोर शराबा होता था और यह पहली सवाल फिल्म थी, इसलिए रात का समय चुना गया। उस समय पूरा प्रकाश आर्टिफिशियल लाइट द्वारा किया गया, जो कि पूरा दिन जैसा माहौल कायम किया जा सके। मूक युग की अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था, क्योंकि मूक फिल्मों को बनाने के लिए कोई खास ऐसी ज़रूरत महसूस नहीं होती थी, मगर आलम आरा एक सवाद फिल्म थी और शूटिंग रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम बनावटी प्रकाश व्यवस्था जरूरी थी। उन्हें दिन जैसा आभास करवाना था, यहीं से प्रकाश प्रणाली बनी, अर्थात फिल्मों में प्रकाश प्रणाली का इस्तेमाल आरंभ हुआ, जो आगे फिल्म के निर्माण का जरूरी हिस्सा बनी, क्योंकि अब दिन और रात दोनों समय फिल्में बनाई जा सकती थी। तीसरा अनुच्छेद देखिए, आलमारा ने भविष्य से लेकर वाले स्टार थे तक। आलमारा फिल्म ने भविष्य को कई स्टार और तकनीशियन तो दिए ही, साथ साथ वह फिल्म थी, ऐसी फिल्म थी जिसमें एक इतिहास रचा और एक नए ही निर्माण की शुरुआत हुई। अर्देशिर की कंपनी ने ही भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक और लगभग 100 सवाक फिल्में बनाई। यह उनका भारतीय सिनेमा के लिए बहुत बड़ा योगदान था। आलमारा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी ही आकर्षक थी। जिस तरह लोग अरेबियन नाइट्स के आधार पर होने वाले कार्यक्रमों की ओर आकर्षित होते थे, उसी तरह जब आलमारा फिल्म प्रदर्शित हुई तो लोगों में उसका आकर्षण भी अरेबियन नाइट्स की तरह ही था। इस फिल्म ने हिंदी उर्दू के मेलजोल से बनी हिंदुस्तानी भाषा को लोगों के मध्य अत्यधिक लोकप्रिय बना दिया। इस फिल्म में आम बोलचाल की भाषा द्वारा हमारे भारत के संस्कृति और गीतों को सुंदर तरीके से संगीत दिया और नृत्य के अभिनय के अनोखे संयोजन देखने को मिले। फिल्म की नायिका थी जुवेदा और नायक थे विट्ठल। वे उस समय के सबसे ज्यादा वेतन पाने वाले स्टार थे। बच्चों, पाठ का आदर्श पाठ कक्षा समय में कराया जाएगा और शब्दार्थ व प्रश्नोत्तर आप अपनी नोटबुक में लिख लेना। धन्यवाद।